अपने जीवन की यात्रा को देखें। जीवन में चलते चलते कभी कभी कुछ छोटी बड़ी बातें आती हैं जो मन क्वेश्चन करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने विश्वास किया, पर मुझे धोखा क्यों मिला। मैंने बहुत मेहनत की, पर मुझे उतनी सफलता क्यों नहीं मिली। किसी पेशेंट के लिए मैंने बहुत मेहनत की, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्यों हो गया। हमारा भाग्य कौन डिसाइड करता है। मेरा भाग्य किसने लिखा। और अगर आज मुझे इसमें कुछ चेंज करना है तो किसके पास जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने लाइफ में सोचा कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है। यस, हम सब लाइफ की एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। हम में से कौन कौन फील करता है कि जैसी स्क्रिप्ट लिखी थी जीवन बिल्कुल वैसी चली। कई बार स्क्रिप्ट से थोड़ी मिलती जुलती चलती है, कई बार तो स्क्रिप्ट से बिल्कुल ही एकदम ही चेंज हो जाती है। एक परिवार से मिलने हम बहनें गई तो उनके 25 साल के बच्चे की सगाई थी अगले हफ्ते, एंगेजमेंट बेटे की थी। तो माहौल घर का कैसा होगा, सेलिब्रेशन, सारी तैयारी चल रही है। एक हफ्ता पहले उनका वो बेटा किसी और के फंक्शन पर गया, बाहर आया शादी से, गाड़ी पेड़ से लगी, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, उसी क्षण आत्मा ने वही शरीर छोड़ दिया। स्क्रिप्ट में क्या लिखा था और एक्चुअल सीन कैसा हो गया। जब इतना बड़ा शिफ्ट आता है स्क्रिप्ट में कि हमने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया, तो मन ये क्वेश्चन करता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो जब उस परिवार से मिलने गए बहने, तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया वो कहा, भगवान ने हमें किस बात की सजा दी। हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, सबके लिए अच्छा किया, जिसको प्रॉब्लम थी हमने हेल्प की, सब किया, इतनी बड़ी सजा किस बात की मिली। हमने ऐसा क्या किया और भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि बचपन से सुना था कि जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में वो किसकी मर्जी से हो रहा है। राइट है, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। पत्ता पत्ता भी हिलता है तो ईश्वर की मर्जी से हिलता है। राइट, राइट। एक क्षण सोचते हैं कि अगर सचमुच ये दुनिया परमात्मा की मर्जी से चलती तो एक वर्ड बताओ ये दुनिया कैसी होती। देगा, आंसर कैसे है? ब्यूटिफुल, परफेक्ट। हर एक का भाग्य कैसा होता? परफेक्ट। आज जो हर रोज हो रहा है, क्या लगता है ये भगवान चूज करता होगा? क्या भगवान ने चूज किया होगा उस दिन वो जो स्कूल में हुआ? क्या भगवान चूज करेगा, डिसाइड करेगा कि एक कन्या सुबह घर से निकली और रास्ते में क्या कुछ हो गया? ये परमात्मा करेगा? क्या परमात्मा हमारा भाग्य लिखेगा तो ऐसा भाग्य लिखेगा? अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखे, एक वो भाग्य परफेक्ट होगा, और दूसरा वो सब बच्चों का भाग्य कैसा लिखेगा? इक्वल लिखेगा। आज ना परफेक्ट है और डेफिनेटली ना इक्वल है। तो जब भी मन में कोई क्वेश्चन आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो हमारी उंगली कहां जाती थी? ऊपर वाला। एक और कॉन्सेप्ट हमने बचपन से सुना, जैसा कर्म वैसा फल, राइट है? राइट है? तो ये भी राइट है, वो भी राइट है। जैसा कर्म वैसा फल वो राइट है, या जो हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, कौन सा राइट है? अगर हम कहते थे जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उंगली कहां जाती थी? अब अगर हम ये कहते हैं कि जैसा कर्म वैसा फल, अब अगर मन कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उंगली कहां जाएगी? अब उंगली किसके पास जानी? अब उंगली किसके पास जानी है? अपने पास। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? अब अगर मुझे अपने भाग्य में कुछ थोड़ा चेंज लाना है, तो किसके पास जाना है? आज बहुत सब भाई बहनों को क्यूरियोसिटी होती है अपना भाग्य जानने के, और एक बहुत बड़ी जहां हम जाकर अपना भाग्य जान सकते हैं। अब अगर सामने वाले हॉल में कोई बैठ जाए कि मुझे भाग्य बताना आता है, तो आप यहां बैठेंगे या दूसरे हॉल में जाएंगे? है ना? कोई कहीं भी हम बैठे ना, चार पांच लोग भी कैजुअल, कोई कहे मुझे हाथ देखना आता है, एक सेकंड हम नहीं लगाएंगे चेक करने के लिए ठीक से आता है नहीं आता, क्या क्रेडिबिलिटी है, राइट बताएंगे नहीं बताएंगे, इतनी क्यूरियोसिटी हम ऐसे देखते हैं। बहुत ध्यान से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो अंदर गई उसको फिर डिलीट करना इम्पॉसिबल है। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग्य जानना कि अपनी चॉइस का भाग्य बनाना? एक है सिर्फ जानना कि क्या होने वाला है, एक है अपनी चॉइस का भाग्य बनाना। तो हम यहां आए हैं अपनी चॉइस का भाग्य बनाने के लिए। जैसा कर्म वैसा फल सिंपल लाइन है, एक छोटे बच्चे को भी पता है, लेकिन क्या हम इस लाइन को सारा दिन पकड़कर जीवन में चलते हैं? अगर हम इस लाइन को सारा दिन जीवन में पकड़ के चलते, तो हमारा भाग्य कैसा होता? हमारा भाग्य, हमको अटेंशन होती कि जैसा कर्म वैसा फल। सारा दिन में एक फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा ध्यान रखना है और अटेंशन पे रखना है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं और करते हैं नहीं, सिर्फ जो हम सोचते हैं, एवरीथिंग दैट वी क्रिएट एंड वी रेडिएट, मतलब एनर्जी जो हमसे निकलेगी बाहर जाएगी, वो है हमारा कर्म। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, एनर्जी हमने क्रिएट की, वो बाहर रेडिएट हुई, वो है हमारा कर्म। आज हम में से बहुतों को ये आ गया है कि हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। आप में से किसी को आता है कड़वा कड़वा सोच के मीठा मीठा बोलना? आता है? किसी से मिले, कहा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर आते रहना, नेक्स्ट संडे हम फिर मिलेंगे, अंदर से सोचते बोर हो गया, बिना बताए आ गया, संडे भी खराब कर दिया, मैच देखना था, टाइम वेस्ट हो गया, इंडिया जीत भी गया उतनी देर में। तो थॉट और वर्ड क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। लेकिन अपनी चेकिंग की तो हमने कहा मैंने बहुत प्यार से बात की, मैंने बहुत अच्छा व्यवहार किया। तो अगर अपना कार्मिक अकाउंट चेक करते तो हम अपने आप को कौन सी साइड पे मार्क्स दे देते, मेरा कर्म कैसा था, टिक, राइट। क्योंकि हमने थॉट को कभी कर्म पे नहीं लाया कि सोचना भी कोई कर्म है। बोल और एक्शन से ज्यादा पावरफुल कर्म सोचना है, क्योंकि थॉट्स हम ज्यादा क्रिएट करते हैं, वर्ड्स कम क्रिएट करते हैं। एनर्जी तो सामने वाले को पहुंच रही है ना सारी, सारा दिन में हम सोचते कितना है, बोलते कितना है। तो एक ये एनर्जी फ्लो अगर हम कांस्टेंट रखें, जो हम सोचते बोलते और करते हैं वो एनर्जी हमारे से निकल बाहर जा रही, वो हमारा कर्म। जो एनर्जी बाहर से हमारी तरफ आ रही है, सिचुएशंस, लोगों का व्यवहार, वो क्या है? एक है एनर्जी जो हमसे निकलकर बाहर जा रही है, एक है एनर्जी जो बाहर से हमारी तरफ आ रही है। जो हमसे बाहर जा रही है वो कर्म, जो बाहर से हमारी तरफ आ रही है वो हमारा भाग्य, वो हमारा फल। अब हमें दोनों के बीच का कनेक्शन पता चल गया कि जो सामने से आ रहा है वो हमने ही कभी ना कभी भेजा था। सपोज मैंने यहां से एक बॉल लिया, सामने वाली दीवार पे मारा, तो हाथ में कंट्रोल कब तक है? जब तक वो हाथ से निकला नहीं। टेक ऑल योर टाइम टू चूज कितना स्पीड पे मारना है, किस एंगल पे मारना है। एक बार बॉल हाथ से निकल गया, उसके बाद उसने उस दीवार को हिट करना है और वहां से वापस आना है। जब वो बॉल सामने से वापस आ रहा है, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? विजुअलाइज करो, बॉल सामने से वापस आ रहा है, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट? बॉल सामने से वापस आ रहा है, बॉल सामने से वापस आ रहा है मतलब परिस्थिति सामने से आ रही है, किसी का व्यवहार सामने से आ रहा है, ये सारे बॉल्स हैं जो सामने से वापस आ रहे हैं, कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट? अपने आप को बचा सकते हो मतलब क्या कर सकते हो, वहां से दूर हो सकते हो? बॉल आपके लिए है। एक चीज 100% याद रखनी है, हम अपने कर्म के रिटर्न से कहीं भाग नहीं सकते। इट्स लाइक अ मैसेज, जो सामने से बॉल आ रही है क्या हम उसको कुछ कर सकते हैं? कहा इंसल्ट कर दी मेरी सबके सामने, मुझे हर्ट हो गया, बुरा लगा, गुस्सा हो गया, तो उतनी देर में नई वाली बॉल भी कौन सी चली गई, फिर नेगेटिव चली गई। अब छूट गई है हाथ से तो फिर वापस आएगी, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश में एक और नई फेंक देंगे, तो पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग पिंग पोंग, कई दिन कई साल चलता रहेगा। सामने से जो मेरे पास अभी बॉल आई यहां से, वो थोड़ी सी डार्क कलर की थी। आप में से किसी के पास काले रंग की बॉल भेजता है कोई आजकल जीवन में? किसी को मिल रही है कहीं से? बड़े भाग्यशाली हो, आपको किसी को काले रंग की बॉल नहीं मिलती है। ओ, काली काली मिलती है, अच्छा क्वेश्चन रॉन्ग था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, काली काली नहीं मिलती है, हमें बहुत सारी व्हाइट बॉल्स मिलती है आसपास के लोगों से। आपको तो सबसे ज्यादा मिलती है, हर रोज आपका हर पेशेंट आपको व्हाइट बॉल देकर जाता है, लेकिन कुछ कुछ ब्लैक बॉल्स मिलती है। किसी का गुस्सा, किसी का झूठ, किसी का पॉलिटिक्स खेलना, किसी का हमें नीचे गिराना, किसी का हमारे साथ नफरत करना, ये सारी कौन सी बॉल्स हैं जो वापस आ रही हैं, ब्लैक आ रही है। अब हमें अपने आप से आज ये क्वेश्चन करना है और डिसीशन लेना है, अगर सामने से ब्लैक बॉल आ रही है, That is not in my control, obviously. And most important, I know कि सामने से ब्लैक बॉल क्यों आ रही है। पहली बात, सामने से ब्लैक बॉल क्यों आ रही है मेरे पास? क्योंकि मैंने ही वो वाली रंग की बॉल कभी ना कभी भेजी थी। अब अपने आप से आज डिसीशन लेना है, अगर सामने से ब्लैक बॉल आ रही है, कैन आई नाउ थ्रो व्हाइट? मतलब सामने से कोई धोखा दे रहा है, कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, हम उसके लिए दुआ करें। क्या हुआ? सोचना, सामने से कोई मुझसे चिल्ला के बात करे, हम उससे प्यार से बात करें। कोई मेरी निंदा करे और हम मुस्कुरा दे। हाँ जी, नो अदर ऑप्शन अगर खुश रहना है एंड नो अदर ऑप्शन अगर इस बार व्हाइट बॉल भेजनी है। क्यों हमें व्हाइट बॉल भेजनी है इस बार? क्योंकि अगर इस बार फिर हमने ब्लैक बॉल भेज दी, जैसा कर्म वैसा फल, इसलिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर आज मैंने फिर उनके लिए गलत सोच लिया तो फिर वो ब्लैक बॉल वापस आएंगे, फिर मैं भेज दूंगा फिर वो आएगी। तो राजयोग मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी हमें जो सबसे बड़ी पावर दे रहा है वो ये है कि पहले की फेंकी हुई हमारी ब्लैक बॉल्स आ रही हैं, आएंगी आएंगी, लेकिन अब अपने आप को हम इतना पावरफुल बना लें कि एक, हम कोई नई ब्लैक बॉल ना फेंक दें, और जो पहले की ब्लैक बॉल्स आ रहे हैं उनको भी रिटर्न में हम क्या भेजें? व्हाइट भेजें। अब अपने आप के सामने जरा थोड़े से वो दो चार आत्माओं को ले आए जो ब्लैक भेज रहे हैं आपको। दो चार होते हैं, ज्यादा नहीं होते। एक्चुअली हमारा फोकस ज्यादा उन पर है ना, इसलिए हमें लगता है कि ज्यादा लोग ब्लैक भेज रहे हैं। एक्चुअली ज्यादा लोग हमें व्हाइट देते हैं, लेकिन कुछ दो चार होते हैं वो हिसाब किताब जो थोड़े से कड़क हैं, उनको सामने लेकर आए। ले आए सभी, ले आए सभी। अब आज डिसीशन लेना है यहां से जाने से पहले, क्योंकि फरिश्ते वापस जा रहे हैं ना, वैसे भी फरिश्ते तो ब्लैक बॉल डाल ही नहीं सकते हैं। फरिश्तों को अब अंडरस्टैंडिंग भी आ गई कि ये जो ब्लैक बॉल सामने से आ रही है वो उनकी कोई गलती नहीं, मैंने ही भेजी थी, मेरे पास ही वापस आ रही है। फरिश्ता अब डिसीशन भी ले सकता है और उसके पास पावर भी है कि इस बार मुझे कौन सी वाली भेजनी है। सुना करते थे ईंट का जवाब पत्थर से देना है। देखो सोसाइटी हमारी कंडीशनिंग कैसे करता है। अब समझ में आया ईंट पहली बात मेरे पास क्यों आ रही है, ईंट ही मेरे पास क्यों आई? क्योंकि मैंने कभी ना कभी ईंट फेंकी थी। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया तो फिर क्या हो जाएगा गड़बड़? पहले ईंट फेंकी थी, ईंट आई, अब पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। एंड जो आता है इट्स नॉट नेसेसरी रिटर्न, इवन वाइल गिविंग सबसे पहले किसको अनुभव होगा? मी। तो फरिश्ते अपनी इक्वेशन को चेंज करते हैं और एंजल्स कहते हैं ईंट का जवाब आप डिसाइड करो और आप आंसर करो, ईंट का जवाब फूलों से, पक्का? कितने फूल और कितनी बार? कई भाई बहने ना काउंटिंग करते हैं, उसने गलत बोला मैंने प्यार से बात की, फिर उसने फिर गलत बोला फिर मैंने प्यार से बात की। सिस्टर 5 times हो गया, अभी कितनी देर तक वहां से आता जाएगा, अभी और कितनी बार करना है? सो कितनी बार करना है? कितनी? ताली किसके लिए? जो भेजते हैं उनके लिए, या हमारे को मिलती है उसके लिए, या जो डिसीशन हमने आज लिया है कि हमने रिटर्न में अब कौन सी भेजनी है? राइट। कितनी बार, कितनी बार भेजे हम फूल? इफ हमें ये क्लैरिटी होगी, देखो पहले हमें क्या लगता था, उसने ईंट मारी मतलब कुछ गलत किया, तो वो गलत और गलत के साथ मुझे क्या करना चाहिए? गलत। अब समझ में आया, समझ में क्या पता था, याद आया, जैसा कर्म वैसा फल। तो अब उनके साथ गलत करना मतलब किसके साथ गलत करना? सपोज आप किसी और डॉक्टर के साथ एक नर्सिंग होम चलाते हैं, ठीक है, कुछ साल आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है, फिर कुछ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है और आपका डॉक्टर जो पार्टनर है आपके नर्सिंग होम में वो आपके सामने वाली लेन में जाके एक और खोल देते हैं, ठीक है, कुछ यहां गलत गलत किया और वहां खोल दिया, इशू आ गया। अब हम उनके बारे में सोचते हैं, वो हमारे साथ गलत करके गए हैं, शायद चीट भी करके गए हैं, शायद इस हॉस्पिटल के पेशेंट्स को वहां बुलाने के लिए अब वो कुछ गलत गलत बातें भी फैला रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। अब उन्होंने जाकर हॉस्पिटल तो खोल लिया सामने, हमारे को सिर्फ सोचना है उनके बारे में, तो हम कैसा सोच सकते हैं? हमेशा देखें, सोच की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम ब्लैक की डायरेक्शन में चले गए, इसने मुझे दुख दिया, इसको भी दुख मिलना चाहिए। भगवान इसको इस कर्म की सजा दे। भगवान अगर है तो मेरे साथ न्याय होना चाहिए, इसके साथ गलत होना चाहिए। इसके परिवार को भी पता चलना चाहिए कि दुख क्या होता है। ये एक एक थॉट कौन सी जा रही है, कौन से कलर की? गलत सोचने की, गंदा सोचने की लिमिट ही नहीं है। कई बार तो बैठे बैठे फ्यूनरल तक भी होकर आते हैं, खत्म हो जाए ये सारे। यस वी कैन थिंक वेरी पेनफुली फॉर समबडी। पूरा करके आ जाएंगे उनका कार्यक्रम हम। सोचने की कोई लिमिट नहीं है, देर इज नो लिमिट टू हाउ वी कैन थिंक। लेकिन ब्यूटी ये है, जैसे नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, वैसे उस आत्मा के लिए प्योर सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा भी हम सोच सकते हैं ना उनके लिए, जो हुआ मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ पहले का, अब उसका भी क्लिनिक बहुत अच्छा चले, मेरा भी क्लिनिक बहुत अच्छा चले, ऐसा भी सोच सकते हैं? पॉसिबल? इज इट वेरी डिफिकल्ट टू थिंक लाइक दिस? नो। और जैसे ही ये सोचा, हमने कौन से कलर की बॉल फेंक दी? व्हाइट। अपना भाग्य चेंज किया। हम क्षमा दूसरों को नहीं करते, हम एक्चुअली क्षमा किसको कर रहे हैं? हम क्षमा अपने आप को कर रहे हैं। जब हम किसी के घर फंक्शन पे जाते हैं, बर्थडे पे जाते हैं, तो एक गिफ्ट लेकर जाते हैं। जब आप किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं, तो क्राइटेरिया क्या होता है गिफ्ट खरीदने का? जी आप सबको पता है ना क्राइटेरिया कौन सा होता है गिफ्ट खरीदने का, है ना? तो जब हम मार्केट जाएंगे, तो पहले यहाँ पे ये रहेगा उन्होंने कितने का दिया था, तो हमने भी प्लस माइनस थोड़ा सा परसेंटेज उतना ही देना है। अगर आपको आज ये पता चले कि जो गिफ्ट आज रात को आप उनको देंगे बर्थडे पे, नेक्स्ट संडे वही का वही गिफ्ट आपके घर आने वाला है, अब कितने का देंगे? अब नो लिमिट। दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। जैसा कर्म वैसा फल, मतलब जो गिफ्ट आज देंगे, नेक्स्ट संडे वो गिफ्ट हमारे पास आने वाली है। हमें जीवन में अगर खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब अगर नेक्स्ट संडे वो गिफ्ट चाहिए, तो आज संडे कौन सी गिफ्ट देनी पड़ेगी? देंगे गुस्सा, चाहिए खुशी। पॉसिबल? तो ये नहीं चेक करना उन्होंने मुझे क्या दिया, उन्होंने कितना दिया, उन्होंने कितनी बार दिया। सिर्फ ये याद रखना है, जो मैंने दिया वही मेरे पास वापस आने वाला है। तो जीवन जीना बहुत 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 सहज और सरल हो जाएगा। जैसा कर्म वैसा फल, तो ऐसे पकड़ के रखना चाहिए। कोई है यहाँ पे लिस्ट पे जिसको फगिव करना है? किसी के पास है नाम किसी को जिसको क्षमा करना है? लॉट ऑफ पीपल। एक सेकंड में डिलीट। मेरा उस आत्मा के साथ पास्ट का कोई हिसाब किताब था? जब हमें आत्मा की जर्नी समझ में आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझ में आती है कि हिसाब किताब किसके बीच था, किसके बीच था? मेरा इस आत्मा के साथ हिसाब किताब था, मेरा इस शरीर के साथ हिसाब किताब नहीं था। आज हम इस कॉस्ट्यूम में हैं, कल हम किसी और कॉस्ट्यूम में होंगे, लेकिन हिसाब किताब। बहुत लोग ये फील करते हैं, ये पास्ट और सब क्यों नहीं होना चाहिए, इधर का इधर चुप तो होना चाहिए। कॉस्ट्यूम सिर्फ एक ड्रेस है। आज दो लोग मिलते हैं, बातें कर रहे हैं। अब बातें करते करते सपोज थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाए, अपने अपने घर गए, नेक्स्ट वीक फिर मिले, उनकी भी ड्रेस चेंज, मेरी भी ड्रेस चेंज, सेकंड मीटिंग कैसी स्टार्ट होगी? फर्स्ट मीटिंग का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा सेकंड मीटिंग पर? पड़ेगा। या हम कहेंगे ड्रेस चेंज हो गई, अब फ्रेश स्टार्ट करते हैं? नहीं, मीटिंग ड्रेस और ड्रेस की नहीं थी ना, मीटिंग शरीर और शरीर की नहीं थी ना, मीटिंग किसकी और किसकी थी? आत्मा और आत्मा की थी, तो हिसाब किताब तो कंटिन्यूड रहना ही है। सपोज उसी डॉक्टर ने जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप थी आपका बहुत नुकसान किया, आपका धन गया, मन की खुशी गई, तन का सुख गया, संबंधों में प्रॉब्लम आ गई, एक कर्म क्रिएट हुआ। 50 साल 100 साल बीत गए, उनका भी कॉस्ट्यूम चेंज, आपका भी कॉस्ट्यूम चेंज। अब ये दो आत्माएं जब फिर कहीं मिलेंगी तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब जब वो नेक्स्ट मिलेंगी, सिर्फ होगा ये कि उनको ये नहीं पता होगा कि हम पहले मिल चुके हैं, और फिर हम कहेंगे मैंने इनके साथ कभी गलत नहीं किया, ये मेरा भाई है, मैंने बचपन से इसको पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, बिजनेस में सेट किया, इसने मुझे ही धोखा दे दिया। क्योंकि हम किसको देख रहे हैं? हम भाई को देख रहे हैं। वो भाई इस मूवी में रोल प्ले कर रहा है। पिछली मूवी में कौन था वो? पिछली मूवी में वो वाला डॉक्टर था जिसके साथ मैंने गलत किया। तो वो आएगा वापस? नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आएंगे ही। क्वेश्चन मार्क नहीं क्रिएट करना है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमेशा अंडरस्टैंडिंग, जो मेरे पास एनर्जी आ रही है वो एनर्जी मेरी तरफ से कभी ना कभी गई थी। इम्पोर्टेंट है इस बार मेरे से कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी ना चले जाए जो फिर कार्मिक अकाउंट वैसा वाला क्रिएट हो जाए। क्लैरिटी हुई? सिंपल। अब व्हाइट बॉल भेजना इजी, व्हाइट बॉल भेजना इजी। हम व्हाइट बॉल दूसरे को नहीं दे रहे एक्चुअली, हम किसको दे रहे हैं? मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है। जैसा कर्म वैसा फल, वो तो हर आत्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जिस प्रोफेशन में हैं एज अ हीलर, तो इस लाइन का महत्व और बहुत ऊंचा उठ जाता है। आपके पास हर एक जो आता है वो विश्वास में आता है, राइट? दर्द में आता है, और अपनी जीवन को वो आपको सरेंडर कर देता है, या अपने परिवार के मेंबर की जीवन को वो आपको सरेंडर करता है। सपोज एक माँ आती है, अपने बच्चे को लेकर आती है। आज तक उस माँ ने किसी को उस बच्चे को हाथ नहीं लगाने दिया होगा। कोई हाथ लगाएगा तो उसको पड़ेगी वो माँ से। लेकिन वो माँ आती है, आपके पास आती है, कहती डॉक्टर साहब मेरा बच्चा, तो उसने अपने बच्चे को क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। कितना फेथ चाहिए सरेंडर करने के लिए? ऐसा तो फेथ किया, सरेंडर किया, पेन में वो आए। अगर हमने अपने छोटे बड़े फायदे के लिए उसको थोड़ा सा एक्सप्लॉइट किया, तो कैसा कर्म क्रिएट किया? दिख रहा मैग्नीट्यूड कैसा कर्म क्रिएट हो जाएगा? ये सिंपल वाली ब्लैक बॉल नहीं है, बिकॉज आई केम विद द एनर्जी ऑफ फेथ, विद द एनर्जी ऑफ सरेंडर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आई केम इन पेन। और अगर वहां से जो एनर्जी आई कि थोड़ा सा अपने प्रॉफिट के लिए, अपने हॉस्पिटल के टारगेट को मीट करने के लिए, अगर मुझे थोड़ा सा भी एक्सप्लॉइट किया, तो कैसा कार्मिक अकाउंट क्रिएट होगा? 2 साल पहले जब उत्तराखंड में फ्लड हुआ था, हम सब टीवी पर बैठ के न्यूज देख रहे थे ना, तो उस न्यूज में हमने ये देखा सबने कि कुछ लोग उस समय का फायदा उठा रहे थे, है ना? देखा ना कि कोई महंगी चीज बेच रहा है, कोई वो चार्टर फ्लाइट महंगी चला रहा है, वो सब। तो घर बैठ के जब हम ये देखते हैं तो मन क्या कहता है कि ये कोई समय होता है क्या ऐसा करने का? ऐसे बोलेगा ना माइंड? माइंड क्या बोलेगा कि सब लोग दर्द में हैं, इनको पैसे के बारे में सोचते हैं ये ऐसे टाइम पर? लेकिन वही तो हम रोज कर रहे हैं, वही तो हम रोज कर रहे हैं। देहरादून तो कभी कभी होगा, लेकिन जो आपके पास आता है उसके लिए तो वो दिन उसके लिए ट्रेजेडी है। है ट्रेजेडी? नहीं है ट्रेजेडी, समय आया है ये जो पिछले कुछ सालों में अलग लहर फैली है, हम सबको मिलकर इस लहर को वापस बदलना है। बदलना नहीं बदलना है, रेडी है ना हम करने के लिए? चाहे हमारे आसपास सब लोग कुछ भी कर रहे हो, चाहे हमारे पास प्रेशर कितना भी हो। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में मीडिया ने बहुत कुछ सामने लेकर आया है। जिस थोड़े दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आर्टिकल था, 40% सर्जरीज आर अननेसेसरी। नाउ सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई रीड दिस एज अ लेमैन। इट्स जस्ट अ न्यूज़पेपर एंड व्हेन आई रीड इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड इट सेज 40% सर्जरीज आर अननेसेसरी, somebody is exploiting you for their own financial need, तो मेरा जो faith है एक डॉक्टर के प्रति, which means doesn't mean के सब डॉक्टर्स वो कर रहे हैं, लेकिन doubt तो हर patient में आना शुरू हो गया ना। doubt हमारी healing को क्या कर देगा? अब suppose मैं आपके पास आऊं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप मेरी prescription पे लिखेंगे CT scan, मेरा माइंड ने फर्स्ट थॉट क्रिएट करनी है, सच्ची में जरूरी है या ये अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं? हीलिंग किस बेसिस पे हुआ करती थी? फेथ, फेथ पर होती थी। एंड हम कहते हैं फेथ कैन हील। इफ फेथ कैन हील देन डाउट कैन स्लो डाउन हीलिंग एटलीस्ट। कर सकता या नहीं कर सकता? तो ये हम सब जिम्मेवार है ना। ये वो फ्रेटर्निटी है जहां हर एक को आंख बंद करके आना चाहिए, लेकिन आज इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि अब तो डाउट करना बहुत नेचुरल होने लगा सबके लिए। तो इस पूरी चीज को हम में से कौन जिम्मेवारी उठाएगा ठीक करने के लिए? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट फॉर द पेशेंट। I never feel sympathetic so much for the patient. It's more sympathy and empathy for the doctor. If I come to you as a patient and आपने मुझे एक extra scan लिख दिया, एक extra कुछ लिख दिया, ठीक है, मैंने थोड़ी देर anxiety create की, mind ने fear create किया, मेरे 2-4-5 हजार रुपए भी गए, but that's where my karma ends, कि मेरा उतना ही नुकसान हुआ। लेकिन जिसने मुझे exploit किया, और फिर सिर्फ मुझे नहीं किया, कितनों को सारा दिन करते हैं, तो उनका कर्म कौन से मैग्निट्यूड का बन जाएगा? हम वो प्रोफेशन में हैं जहां अगर हम चाहें तो इतनी दुआएं कमा सकते हैं। ऐसे दुनिया में कहते हैं ना, इतना धन कमाया जो इनकी 7 पीढ़ी चलेगी अभी इस धन पर। ये वो प्रोफेशन है जो इतनी दुआएं कमा सकता है कि वो क्या उनकी कितनी जेनरेशन उस दुआओं से चल सकती है। लेकिन फिर जो इतनी दुआएं कमा सकते हैं, अगर उसमें उन्होंने थोड़ा सा इंटेंशन को चेंज कर दिया, तो फिर वो दुआओं की ऑपोजिट कमानी शुरू कर देंगे। किसी और प्रोफेशन में इतना हाई रिस्क नहीं है, किसी और प्रोफेशन में ना कोई इतनी दुआएं कमा सकता है, लेकिन फिर ना कोई उसका ऑपोजिट भी नहीं कमा सकता। ये वो प्रोफेशन है जो दुआएं भी कमाए तो इतनी, लेकिन अगर छोटी सी गड़बड़ हो गई तो उसका ऑपोजिट भी कमाया तो इतना। इट्स टाइम टू पॉज कि हमें क्या कमाना है। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम कमा रहे हैं, कमाते रहेंगे, इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। लेकिन जीवन में दुआएं कमाना, अगर हमने इतना धन कमाया, लेकिन वो धन के साथ हमने किसी का दर्द कमा लिया, तो फिर हमारे घर सिर्फ धन नहीं आएगा ना, फिर शाम को उस धन के साथ वाइब्रेशन कौन सी आएगी घर पे? दर्द आएगा कि नहीं आएगा उसके साथ? तो सब क्या कर रहे हैं उस भीड़ में, हमने अब नहीं चलना, हमने अपने फायदे से पहले उसका फायदा सोचना है। डॉक्टर मीन्स वो जो सामने वाली आत्मा के मन को शांत करते हैं। ये सबसे बड़ी दुआ मिल सकती है आपको कि आपकी एक लाइन मेरे माइंड को साइलेंट कर दे। आज आप देखो हम सब कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम अपने पेशेंट को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। आज अगर पेशेंट हमसे मिलने के बाद बाहर जाकर डिससैटिस्फाइड रहे, उसके माइंड के क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए, तो वो जितनी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा वो एंग्जाइटी किसको पहुंचने वाली है। आई एम अ पेशेंट, आई हैव कम बैक डिससैटिस्फाइड आफ्टर मीटिंग यू, सो आई एम इन एंग्जाइटी। फिर मैं इंटरनेट पे सर्च करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको पूछूं, ये मेरी सारी एंग्जाइटी की वाइब्रेशन किसके कर्म से क्रिएट हुई है, तो वो एनर्जी किसको रेडिएट होगी। हम कह रहे हैं टाइम नहीं है क्योंकि हम कम टाइम में ज्यादा लोगों को देखने के चाहते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को तो देख लिया, दवाई भी लिख दी, कमाई भी हो गई, लेकिन साथ में कुछ और भी कमा लिया। नहीं तो डॉक्टर एंड स्ट्रेस ये वर्ड मैच नहीं कर सकता। जो आत्माएं इतनी दुआएं कमाते हैं सारा दिन, वो स्ट्रेस अनुभव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। जो आत्माएं दुआएं कमाती है वो कैसी होनी चाहिए, सारा दिन लाइट कि इतनी दुआएं कमा रहे हैं। इट्स लाइक जो इतना धन कमा रहा है और वो ऐसे खड़ा हुआ है, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। तो इतनी दुआएं कमाने वाला प्रोफेशन हमें मिला सिर्फ छोटी सी इंटेंशन में चेंज। आई एम श्योर आप में से कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा होगा, लेकिन चेकिंग बहुत डीप लेवल पर करनी है, बहुत डीप लेवल पे करनी है कि क्या मेरे हर कर्म में मैं सामने वाले का फायदा सोच रहा हूं एंड अपना कुछ भी नहीं। हीलिंग मीन्स वो एनर्जी जो ऐसे जाए। उन्होंने तो धन देकर जाना ही है हमें, लेकिन अगर हमारी फ्रीक्वेंसी धन के बारे में सोच रही है तो फिर हमारा हाथ ऐसे नहीं ऐसे होगा। एनर्जी ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे इनसे क्या मिलना है, एनर्जी होनी चाहिए मुझे इनको क्या देना है। जैसे ही मेरी ये थॉट हुई मुझे इनसे क्या मिलना है, तो हीलिंग वाली एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, एनर्जी या तो ऐसे फ्लो करेगी या ऐसे फ्लो करेगी। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, भले ये नहीं होता कि हम 5 मिनट दे सकते हैं, हम 15 मिनट दे दे, नहीं, हमें 5 मिनट ही अगर है तो 5 मिनट देना है, लेकिन वो 5 मिनट कैसे होने चाहिए हमारे उस पेशेंट के साथ। आज आप देखो आप हॉस्पिटल में राउंड पर जाते हैं, जस्ट विजुअलाइज दिस सीन। कई बार क्या होता है, रोज वही काम कर करके ना हमारा उस काम में से कंपैशन फैक्टर थोड़ा सा कम होने लगता है, क्योंकि वो हमारे लिए रोज की चीज है। आपके लिए वो रोज की चीज है, लेकिन मैं तो पहली बार बीमार हुई हूं, हुई हो या नहीं हुई हो, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है जो आपके लिए रोज की चीज है। अब आप राउंड पे निकलते हैं, आपको पता है आपको आधे घंटे के अंदर 5 कमरों में जाना है या 10 कमरों में जाना है। For me, lying on that hospital bed, आपके वो 3 मिनट जो आप आने वाले हैं मेरे रूम में, मैं 24 घंटा वेट करती हूं उस 3 मिनट के लिए। करते हैं या नहीं करते, जैसे लोग तपस्या करते हैं ना कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। You are that important, not just for me lying on the bed, my whole family also sitting with me. डॉक्टर साहब कब आएंगे, डॉक्टर साहब कब आएंगे, डॉक्टर साहब कब आएंगे। मेरी पूरी फैमिली अपना शेड्यूल उस तरह से बनाकर आती है कि जब डॉक्टर साहब आएंगे तो वो यहां होने चाहिए। 24 घंटे के अंदर 3 मिनट में आप मेरे रूम में आते हैं सिर्फ, लेकिन जब आप एंटर करते हैं मेरे रूम में, पहले एनर्जी ऐसे वाली होती है कि पहले ही मैसेज मिलता है मैं बहुत बिजी हूं, जल्दी बोलो क्या बोलना है। होती है ऐसी एनर्जी या नहीं, फट 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 फट। फिर आप अकेले नहीं आते, आपके साथ 4-5 लोग बातें करते आते हैं आपके साथ, वो भी राइट है क्योंकि आपको उनको पढ़ाना भी है, सिखाना भी है, वो भी करना है। सामने वाले के ऊपर असर क्या पड़ता है इस बात का कि आप 3 मिनट के लिए आए, उसमें से 2.5 मिनट तो आप आपस में ही कुछ तो बात कर रहे थे और मेरे बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जो मुझे समझ ही नहीं आया कुछ भी। और फिर किसी ने कहा ये क्यों लगाया, ये हटाओ, ये करो, वो करो। तो जब आप वो 3 मिनट के बाद बाहर जाते हैं, आप मेरे मन को शांत करने के बजाय मेरे मन में कई सारे क्वेश्चंस क्रिएट करके चले जाते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ हो गया, मेरे को गलत दवाई मिली थी, कब ये कुछ कुछ कह रहे थे आपस में कुछ तो। When we become instrumental in disturbing somebody else's mind, then for us to be peaceful will be very difficult. वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अब मैं नेक्स्ट 24 घंटे जब तक आपका नेक्स्ट साक्षात्कार नहीं होता मैं ये डिस्टर्ब्ड स्थिति में रहूंगी और मेरी वाइब्रेशन आप तक पहुंचेगी। है ना बड़ी जिम्मेवारी? है बड़ी जिम्मेवारी? नहीं बड़ी जिम्मेवारी। पेशेंट के सामने हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? कैसी भाषा होनी चाहिए? थोड़े दिन पहले जैसे डॉक्टर नितिका थी ना अभी स्टेज पे, तो आई हैड गॉन टू हर हॉस्पिटल, तो वो डिलीवरी करके जस्ट बाहर आ गई ऐसे ही, तो उसके गाउन पे सब ब्लड था। हस्बैंड बाहर खड़ा था एंड द मिनट ही सॉ हर ही सेड दिस इज माय वाइफ्स ब्लड। फॉर हर इट वाज शी जस्ट वॉक्ड आउट व्हाट शी वाज वेयरिंग। सी हाउ समथिंग सो कैजुअल फॉर अस, फॉर अनदर पर्सन ही सेड दिस इज माय वाइफ्स ब्लड ऑन यू। इट्स वेरी बिग, वेरी बिग। तो हम जब पेशेंट के सामने बात भी करें तो हमारी वोकैबुलरी भी कैसी होनी चाहिए जो उनको समझ में आए और उनके मन की हीलिंग करें। आपकी दवाई उनके शरीर की हीलिंग करेगी लेकिन आपको उनके मन की हीलिंग करनी है, क्योंकि कल से हमने देखा और वैसे भी हम जानते हैं कि माइंड का इफेक्ट बॉडी पर आएगा। अगर मन डाउट में है, एंग्जाइटी में है, कंफ्यूजन में है, तो हीलिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा? आपके लिए वो चीज बहुत ऑर्डिनरी है, जैसे घर में हम एक दूसरे से बात करते हैं, नमक डाल फिर जीरे का तड़का लगा, ये कर वो कर, आप वैसे बात करते हैं, ये वाला दो, वो वाला दो, वो वाला वो कर दो। लेकिन जब आप मेरे सामने मेरे शरीर के बारे में ऐसे बात करते हैं तो मेरे को तो सुन के थोड़ी सी फिर क्या हो जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं, मेरे अंदर क्या हुआ है मुझे ऐसा। दिस क्रिएट्स डिस्टर्बेंस हियर एंड देन आई डोंट हैव एनीबडी हु विल आंसर दोज क्वेश्चंस। So the doctor's visit, instead of silencing my mind, it becomes instrumental in creating more unrest and disturbance, and ye vibration aap tak pahunchegi. Bahut choti baatein hain. Wo poore 2 minute hum usko itni quality vibration dekar aaye ki agle 24 ghanta uska man ekdam shant, tab jab hum 24 ghante ke baad jayenge uski body heal hogi. कि उसका मन शांत रहा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर हम आधे घंटे के राउंड के बाद इतनी दुआएं कमा के आएंगे कि फिर हमारे मन की स्थिति भी कैसी होगी। फिर हम शाम तक जब घर पहुंचेंगे तो हमने इतनी दुआएं कमा ली होंगी कि हमारा लाइट वो फरिश्ते। तो एक लक्ष्य रखना है सिर्फ, हमें दुआएं कमाना है। सपोज आप आज फ्रूट लेने जाते हैं, ठीक है, आपको फ्रूट वाले को आप कहते हैं 1 किलो एप्पल दे दो, कहते हैं सर फ्रेश नहीं है, मेरे से मत लो आज। ऐसे मिल जाते हैं लोग कई बार, ऐसे मिल जाते हैं लोग कई बार। हाँ, उसने क्या किया, 200 रुपए के एप्पल, आपके लिए वो अमाउंट कुछ वैल्यू नहीं है, उसके लिए वो अमाउंट बहुत बड़ी, लेकिन उसने अपने फायदे का ना सोचकर आपके फायदे का सोचा। हम घर आकर उसके बारे में कैसा सोचेंगे? दुआएं देंगे ना उसको, ये है दुआएं कमाना। फिर हम कम से कम 2-4 लोगों को वो बात बताएंगे तो वो 2-4 लोग भी उसके बारे में कैसा सोचेंगे, दुआएं कमाएंगे। उस दिन वो फ्रूट वाले ने धन नहीं कमाया, उस दिन उसने क्या कमाया, सिर्फ दुआएं कमाई। उसके बाद हम हमेशा किसके पास जाएंगे, उसी के पास जाएंगे। ये गारंटीड फॉर्मूला है। जो धन कमा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमा रहे हैं, लेकिन जो दुआएं कमा रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा धन कमाएंगे। दैट इज 100% सर्टेन। ये तो कोई भी करके देख सकता है, क्योंकि दुआओं की एनर्जी क्या लेकर आएगी, सफलता लेकर आएगी ना। तो हम भी अगर, क्योंकि हमारा तो प्रोफेशन ही वही है कि अपने फायदे का नहीं उसके फायदे का, कहां हम अपने फायदे के लिए। सो टुगेदर वी हैव टू डू समथिंग कि जो समाज में डाउट की वाइब्रेशन क्रिएट हो गई है वो वापस शिफ्ट होकर किस पर पहुंच जाए, फेथ पर पहुंच जाए। कुछ साल पहले तक हम कहते थे ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, तो फैमिली डॉक्टर का मीनिंग ही क्या होता था, कि ये व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है, वो वाइब्रेशन वापस लेकर आनी है, नहीं तो हीलिंग स्लो डाउन हो रही है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा कर्म, बहुत अटेंशन, और अपने साथ के दोस्तों को, फ्रेटर्निटी को, उनको भी उनके कर्मों पर अटेंशन, कि ऐसे कर्म का जब फल आएगा ना, तो डरना पड़ेगा उस फल से, क्योंकि दर्द को एक्सप्लॉइट किया तो हमें नहीं पता दर्द किस फॉर्म में हमारे पास वापस आएगा। ये दर्द ऐसा आता है वापस, जिसको सारा कमाया हुआ धन भी फिर ठीक नहीं कर सकता। आता है या नहीं आता? ऐसी बात आएगी कि सारा धन उसको ठीक नहीं कर सकेगा। हम कहेंगे मेरा सारा पैसा ले लो, ये ठीक कर दो मेरी प्रॉब्लम। ठीक नहीं होगी, क्योंकि दर्द आना मेरे भाग्य में मैं लिख दिया। तो रखे थोड़ा सा टेंशन, एक ही एजेंडा, मुझे सारा दिन क्या कमाना है, कंपटीशन कोई नहीं है, मुझे किसी से आगे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ देना 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 है, उसी में लेना समाया हुआ है। रोज सुबह जब निकलते हैं घर से तो एक ही एजेंडा रखना, आज मुझे सारा दिन में सिर्फ दुआएं कमाने हैं। एंड दुआएं कमाने के लिए मुझे क्या करना है, सब कुछ सेम करना है जो कर रहे हैं, सिर्फ इंटेंशन की चेकिंग, एंड थोड़ा सा भी आउट ऑफ द वे जाकर किसी को हेल्प कर दे। एक होता आपने दवाई ली, मैंने पैसे दिए, हिसाब किताब बराबर, दुआएं नहीं मिलेंगे। लेकिन एक होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे, तब बहुत बहुत दुआएं मिलेंगी। कई बार आपको कोई ऐसी चीज पता है जो कोई और डॉक्टर बेटर कर सकता है। मैं आपके पास आऊं पेशेंट, एक है कि आप मेरी वो सर्जरी कर दें, एक है आप कहें कि नहीं, आप मेरे से नहीं, आप इस चीज को किसी और से जाकर करवाएं, मैं नाम बताता हूं और मैं आपके लिए रेफरेंस देता हूं। उस दिन आप धन का नुकसान करेंगे, लेकिन वो आत्मा का पूरा परिवार और बहुत सारे उससे जुड़े हुए लोग जीवन के एंड तक आपको दुआएं देते जाएंगे, और वो दुआएं आपके पास और बहुत सारी सर्जरीज लेकर आएगी, बहुत सारी लेकर आएगी। लेकिन वो लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म नहीं। जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो अपने साथ क्या लेकर जाएगी? संस्कार और कार्मिक अकाउंट, बाकी धन बंगला सब यहीं छूट जाएगा। तो लॉन्ग टर्म विजन में कोई ऐसा नुकसान ना कर दें फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। चाहे वो फार्मेसी के लोग हमारे पास आते हैं, चाहे वो हमें कोई भी अट्रैक्शंस देते हैं, कितना न्यूज में दिखाते हैं, एक आईपैड के लिए, एक टूर के लिए, अरे हम इतना कमाएंगे हम उनको ले जाएंगे टूर पे, चलो हम तुम्हें लेके जाते हैं, तुम हमें क्या लेके जाओगे। हमारी डिग्निटी और रॉयल्टी ऐसे में नहीं है, हमारी डिग्निटी और रॉयल्टी ऐसे में है। तो सत्योगी डॉक्टर जा रहे हैं ना वापस, और आपकी वाइब्रेशन से आप औरों को भी इस कर्म से बचाएंगे। कंपैशन फॉर द डॉक्टर नाउ इज नीडेड मोर देन कंपैशन फॉर द पेशेंट, रियली कंपैशन फॉर द डॉक्टर। तो धन हमारा कैसा हो, सात्विक, जिस धन में किसी की दुआ लगी हो, किसी का दर्द ना लगा हो। अन्न हमारा कैसा हो सात्विक, जैसा अन्न वैसा मन, मानते जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर जैसा अन्न वैसा मन, तो फिर हमारा अन्न किस एनर्जी लेवल का होना चाहिए, कितना सात्विक होना चाहिए हमारा अन्न। अगर आज मुझे यहां बांध दिया जाए और मुझे पता हो कि मुझे एक हफ्ते के बाद मारने वाले हैं, तो मेरे अंदर से कैसी थॉट्स क्रिएट हो रही है। बांधा हुआ है यहां, कैप्टिविटी में रखा है एक हफ्ता, पता है उसके बाद मेरे को मार देंगे, स्लॉटर करेंगे, कैसी थॉट्स क्रिएट होती हैं? फियर, व्हाट एल्स, पेन, व्हाट एल्स, हेट्रेड, एंगर, रिजेंटमेंट। एक हफ्ते के बाद जब उसको मारा और खाया तो सिर्फ प्रोटीन नहीं मिला, साथ में वो एक हफ्ते में जो क्रिएट हुआ था, एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट, फियर, वो भी हमने खाया। जब किसी के घर कोई शरीर छोड़ता है, डेड बॉडी घर पर होती है, तो फ्यूनरल से पहले खाना नहीं बनता ना, ऐसा है? आपसे बेस्ट कोई नहीं जानता कि एक डेड बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, राइट? तो साइंटिफिकली रीजन होगा ना कि जब एक डेड बॉडी घर में है तो किचन नहीं खुलता, राइट? क्योंकि हो सकता है वाइब्रेशन, केमिकल्स, वो टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। जब फ्यूनरल हो जाता है, जब हम फ्यूनरल पर जाते हैं, फ्यूनरल होता है, सबसे पहली चीज हम उसके बाद क्या करते हैं, हम पहले वहीं पर हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, फिर घर आते हैं, नहाते हैं, कपड़े सारे धोने में जाते हैं, फिर किचन की, घर की पूरी धुलाई होती है, फिर खाना बनता है। कितना लंबा प्रोसेस है पूरा। तो मतलब डेड बॉडी के घर होते हुए खाना नहीं बन सकता, तो फिर डेड बॉडी का खाना कैसे बन सकता है, कैसे बनता है? इट इज द सेम थिंग, नो? इजंट इट द सेम थिंग? एंड फिर हम डॉक्टर सबसे ज्यादा इस कर्म में रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि हम अपने पेशेंट को लिख कर दे रहे हैं, दिस इज हेल्थ, दिस मे बी हेल्थ फॉर द बॉडी, बट वॉट इज इट फॉर द माइंड? एंड टूडे तो इट्स क्वेश्चनेबल वेदर इट्स हेल्थ फॉर द बॉडी ऑल्सो। तो अगर हम इसको समझें कि सात्विक अन्न का हमारे मन पर क्या असर होगा और फिर उसका मेरे शरीर पर क्या असर होगा, तो हम अपने पेशेंट्स को भी ये बात समझा सकते हैं कि हीलिंग में हमें अन्न कौन सा खाना है? सात्विक। जितना मन शांत होगा, शरीर की हीलिंग जल्दी होगी। अगर हम अपने हॉस्पिटल के किचन का वातावरण, अब सात्विक डजेंट मीन सिर्फ वेजिटेरियन, सात्विक मीन्स जो अन्न बहुत सात्विक मन से बनाया होता है। यहां पर जो आपको कल से भोजन मिल रहा है वो मेडिटेशन की स्थिति में बनाया जाता है, फिर उस सारे खाने में से थोड़ा थोड़ा खाना एक प्लेट में इकट्ठा किया जाता है ऐसे, फिर उसको लेके 10 मिनट के लिए विशेष मेडिटेशन में बैठा जाता है, एनर्जाइज द फूड, एंड फिर वो खाने का सैंपल वापस सारे खाने में मिक्स किया जाता है, जिसको हम कहते हैं भोग लगा कर फिर खाना खाना। आज बहुत स्टडी है इस पर कि वाटर सैंपल्स के ऊपर थॉट वाइब्रेशंस का कितना असर है, तो खाने पर कितना असर होगा? अगर हम अपने हॉस्पिटल के किचन में ये ध्यान रखें कि जो लोग खाना बना रहे हैं वो बड़े साइलेंट और प्यार से खाना बनाएं, इट वर्क्स साइंटिफिकली। प्रसाद का इसलिए महत्व है क्योंकि प्रसाद में वो वाइब्रेशन होती है। हम अपने हॉस्पिटल में हर रोज प्रसाद बनाकर खिला सकते हैं। प्रसाद बनाना मतलब क्या करना, जो खाना बना रहे हैं उनको सिखाना कि खाना बनाते समय स्थिति कैसी होनी चाहिए, एकदम प्योर एंड पावरफुल। अपने घर में प्रसाद बनाना शुरू करें। आज हम धन कमाने में इतने बिजी हैं कि हम ज्यादातर बाहर से खाना ऑर्डर कर देते हैं। बाहर से जो हम खाना ऑर्डर करेंगे उसमें वाइब्रेशन कौन सी होगी? कमाने की। पिछले 10-15 साल से जितना हम बाहर खाते जा रहे हैं, उतना आने वाली जेनरेशन के अंदर पैसे के अलावा इंपॉर्टेंट सोच कोई ऊपर आती नहीं है। फिर हम कहते हैं आजकल की जेनरेशन बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई है। वो मटेरियलिस्टिक इसलिए हो गई है क्योंकि उनको अन्न कौन सा मिलता है जिसमें पैसे की वाइब्रेशन है। हम सब वो जेनरेशन है जिनको 3 टाइम किसके हाथ का भोजन मिला, घर में माँ के हाथ का भोजन मिला, जिसमें प्यार था, पावर थी, वाइब्रेशंस थी, ब्लेसिंग थी, इमोशनल कनेक्ट था मदर के साथ। आज हम या तो बाहर का खा लेते हैं या फिर घर में भी हमने किसी को हायर कर लिया जो पैसे ले खाना बनाए हमारे लिए। चाहे हम कितना भी काम करें, चाहे हम कितने भी बिजी हैं, हमें कम से कम 10 मिनट्स किचन के लिए रखना है। कर सकते हैं? आने वाली जेनरेशन इमोशनली वीकर इसलिए हो रही है क्योंकि उनको घर में मदर की पावर और ब्लेसिंग्स का खाना नहीं मिल रहा है आज। और अब उसमें ही मदर अगर परमात्मा की याद में रहकर वो खाना बनाए, मेडिटेशन, पूजा पाठ की स्थिति में रहकर वो खाना बनाए, तो उस घर को फिर खाना नहीं, हर रोज प्रसाद मिलना शुरू हो जाएगा। और हर रोज प्रसाद खाएंगे तो मन भी सुखी, तन भी हेल्दी। अपना भाग्य अपने हाथ में है, किसी और से जाके पूछने की जरूरत नहीं। सात्विक धन, सात्विक अन्न रोज परमात्मा का ज्ञान लिया, योग किया, सात्विक मन तो तन तो सात्विक हो ही जाएगा। तो भाग्य फिर कैसा होगा? श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य विधाता परमात्मा ये श्रेष्ठ भाग्य लिखने की विधि हमें सिखाता है। परमात्मा भाग्य लिखता नहीं, भाग्य लिखने का ज्ञान हमें देता है। तो कुछ कुछ ये अपनी लाइफस्टाइल के अंदर के चेंजेस हम यहाँ से लेकर आ जाएंगे, राइट? अब हमें जाने के बाद क्या करना है? कल से सुना, वातावरण देखा, वाइब्रेशंस फील की, अच्छा लगा, इंस्पिरेशन भी आई, ये चेंज करना है। लेकिन वातावरण एक बहुत बड़ी चीज होती है। वापस जाने के बाद हम वापस उस वातावरण में जाएंगे तो थोड़े दिन के बाद ये बातें सारी धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? डायल्यूट। फिर कहेंगे वो ठीक है, वहां पे जो वो बोल रहे थे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता, उनको थोड़ी हॉस्पिटल चलाना मेरा, वो बहनों को क्या मालूम, वो तो सेंटर पे रहते हैं। ऐसी थॉट्स क्रिएट करके हम वापस अपने पुराने वाले तरीके पे चले जाते हैं। इसीलिए एक रिट्रीट सेंटर नहीं, हर 5 किलोमीटर पे सेंटर है। अब हमें उस सेंटर का जाकर फायदा उठाना है कि हर रोज हॉस्पिटल जाते आते बीच में कभी भी 15 मिनट के लिए भी अगर हम टाइम निकाल कर उधर जाएं, परमात्मा के महावाक्य सुने, मेडिटेशन रूम में 5 मिनट बैठें, तो 20 मिनट्स के अंदर सारी वापस रिवाइंड हो जाएगी, क्लेंजिंग हो जाएगी, एंड देन बैक इनटू दैट वर्ल्ड कर्म योगी। तब होगा सात्विक मन। और वैसे भी हमने अगले एक हफ्ते के लिए कौन सा होमवर्क उठाया था? गुस्सा नहीं करना मतलब क्या करना? फरिश्ते जैसे चलना। तो यहां से वापस जाने के बाद आप जिस जिस एरिया से आए हैं वहां के नजदीक सेवा केंद्र से जरूर जुड़े हैं। वहां पर मेडिटेशन का कोर्स होता है 3 दिन का, 1 घंटा रोज। अभी तो हमने बहुत शॉर्ट में किया ये 1 दिन में, फिर हम उसको और डिटेल में 1-1 घंटा 3 दिन के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद हम परमात्मा के महावाक्य स्टडी करेंगे और रोज उस वाइब्रेशन में जाएंगे। तो ये ज्ञान सिंपल है, पावरफुल है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। इट्स वेरी साइंटिफिक। सिर्फ उसको करके देखना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो प्रोग्राम आज खत्म नहीं होता, एक्चुअली प्रोग्राम आज से शुरू होता है। अब वो जो फरिश्ते वाले जीवन है वो आज से शुरू होती है कि हम फरिश्ता वापस जाएंगे, हम सत्युगी देवी देवताएं वापस जाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी वाइब्रेशन से टच करके उनको भी वही वाला बना देंगे। तो ये दुनिया बहुत जल्दी क्या बन जाएगी? सत्युग बनेगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू जर्नी।